जय देव प्रजा पिताश्री बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे
ओम शांति ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा ने सारी मुरली याद पर चलाई है। शिव बाबा को हम कैसे याद करें? शिव बाबा की याद से फायदे क्या हैं? और न याद करने से नुकसान क्या है। फायदे तो बाबा कई बार बताते हैं, लेकिन नुकसान क्या है वो आज बाबा ने बहुत विस्तार से बताया है। छोटे छोटे विकर्म हम अभी भी करते रहते हैं और पता भी नहीं चलता है कि ये विकर्म का खाता बढ़ रहा है, और याद करते नहीं तो विकर्म और बढ़ते जाते हैं। फिर क्या होगा अंत में, सजाएं खानी पड़ेगी। तो पापों का को नाश करने का एक ही साधन है, बाबा की याद, नहीं तो फिर अंत में सजा। और वो याद भी कैसी हो, बहुत महीन, अपने को बिंदु समझ बिंदु को याद करना, ये है महीन याद। और इसमें ही बच्चे फेल हो जाते हैं, मेहनत करते नहीं है। बिना मेहनत के फल कैसे मिलेगा, है ना, रामायण में आता है, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान ने राजाई का तिलक किनको दिया, जिन्होंने घिसने की मेहनत की, है ना, चंदन घिसा ना, घिसना पड़ता है, ऐसे ही नहीं चंदन बनता है। तो चंदन को घिसा, चंदन घिसे और फिर जो तिलक बना उससे रघुवीर ने, भगवान ने तुलसीदास को तिलक लगाया। तो हम ये बाबा कहते हैं संगम की बात है, तुम ये याद की मेहनत करते हो तब बाबा तुमको स्वर्ग का राज्य देते हैं, वो स्वर्ग की राजाई का तिलक देते हैं। ऐसे ही नहीं तिलक मिलना है। तो इसीलिए याद में मेहनत जरूरी है, और ये संगम पर ही है मेहनत, सारा कल्प तो ये मेहनत करनी ही नहीं है। तो इसीलिए जबकि अभी ही समय है और उससे इतने फायदे होने हैं, और न किया तो नुकसान कितना होगा, वो आज बाबा ने स्पष्ट रूप से समझाया है। तो कितना सावधान हम बच्चों को होना पड़ेगा। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य, आज 25/6/2026 है। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है क्या, बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी, याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी, और पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो। तिलक तो बाबा देंगे, लेकिन मेहनत करो चंदन घिसने का। संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। उत्तर, संगम पर यही तिलक दो, है ना, यही तिलक का स्थान है, तो उसको जैसे रगड़ना पड़ेगा ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सदा भ्रकुटि में अपने आप को देखो। संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी है, हम शरीर नहीं है। अंदर में यही घोटते रहो, ये घोटो अपने अंदर, जैसे चंदन को घोटते हैं, अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है, ये सबसे महीन याद है ना, बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं तिलक प्राप्त होगा तो ये कितनी बड़ी गारंटी है। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। अभी तो जब भी किससे पूछते हैं ना, चलो इस साल में किसने रोया नहीं, तो बहुत कम हाथ तो उठाते हैं कि रोया नहीं, लेकिन अंदर में तो कितना रोते होंगे क्योंकि दुख तो है ही ना। परंतु जो नहीं रोते वो तो पास है। तो बाबा कहते मैं गारंटी करता हूँ तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। वास्तव में रोना कब आता है, जब हमारे अहम को ठेस पहुंचती है, अहम को, अभिमान को ठेस पहुंचती है। तो अभिमान को जैसे ही ठेस पहुंची, किसने गुस्सा किया, किसने डांटा, किसने कुछ कहा, तो अभिमान को ठेस पहुंचती है। अब वो समझते अभी सामने जवाब तो देना नहीं है, तो वो आंखों से निकल आता है ना। तो बाबा कहते मैं गारंटी करता हूँ तुम याद करो तो अभी आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। ये फुरना चाहिए, फुरना है ये, घोटने का भी फुरना है, ये फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वो यही है, सारी मेहनत जो हमको करनी है वो यही है, हाँ, बाबा को याद करना है तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वो यही है, जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। ये देह अभिमान का आवरण इतना चढ़ा हुआ है जो ये निकलता ही नहीं है। जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, माया बहुत हैरान करती है, एक बाप की याद भुला देती है। फिर एक बाप की याद भुला दी बाप माया ने, तो फिर क्या होता है, दूसरों की याद आ जाती है। बाबा भूला तो लगा, माया का गोला तो पहले से ही लगा हुआ, तभी तो बाबा की याद भूलती है, तो फिर अनेकों की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं, ऐसे साजन को तो कम से कम कितना घंटा याद करना चाहिए, 8 घंटा। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, बाबा को ये मदद देनी है। बाबा को मदद कैसे देंगे, याद से ही देंगे ना, और क्या मदद देंगे, तन मन धन बाबा को और क्या चाहिए, याद से क्या मदद देंगे, ये वातावरण को शुद्ध बना सकेंगे, तत्वों को शुद्ध बना सकेंगे, सकाश दे सकेंगे, तभी तो सतयुग आएगा ना। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की, अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। ये है बहुत बड़ी मेहनत, काम वाम छोड़ करके याद नहीं करना है, काम करते हुए, सब कुछ करते हुए, कर्म माने का ना, कर्म योगी भी बनना है, तो छोड़ना नहीं है, कोई संन्यास नहीं करना है, लेकिन या काम करते कार्य करते याद रहे, इसमें मेहनत है। गीता में भी है मन मना भव, बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। वास्तव में कोई भी अगर विघ्न है, समस्याएं है, कुछ भी है, सचमुच बाबा की याद से बहुत सहज हो जाता है सब कुछ, और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी, ये भी बहुत बड़ी बात है, अंत में तो और कुछ भी काम आना नहीं है, ये याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो, अब हमको वापस जाना है। अशरीरी समझेंगे तभी तो वापस जाना है, ये ख्याल आएगा ना। अब हमको वापस जाना है, ये मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है। हाँ, दिन में तो एकांत नहीं मिलेगी, लेकिन सवेरे का टाइम तो बहुत अच्छा है एकांत का। इसलिए बाबा कहते हैं जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत सारे कल्प में फिर कभी नहीं करनी, अभी करनी है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, कहां भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, या देवताएं ये मेहनत करेंगी क्या? मैं आत्मा हूं, मैं शिव बाबा की संतान हूं, देह अभिमान छोड़ना वह तो नेचुरल है, और परमात्मा की तो याद है ही नहीं, तो इसीलिए ये मेहनत वहां भी नहीं है। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस यही वेला है, केवल यही समय है संगम का, जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर हैं, और कभी बाप आते ही नहीं है, आते ही नहीं जो कहे कि मुझे याद करो। अभी आते हैं संगम पर और कहते हैं मुझे याद करो। तुम भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं। इसलिए क्या होता है, बाप को भूल जाते हैं इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। कौन सा धोखा खाते हैं? कोई ना कोई पाप कर लेते हैं, काम वश, क्रोध वश, लोभ मोह अहंकार वश, ईर्ष्या द्वेष वश, कोई ना कोई पाप कर लेते, मना खुद को धोखा दिया ना। तो बाबा कहते इसीलिए कि बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसीलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण क्या है, धोखा क्यों खाते हैं? रावण बहुत धोखेबाज है। कैसे वो धोखा दे देता है पता भी नहीं चलता है बच्चों को। रावण बहुत धोखेबाज है, आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर ये विचार सागर मंथन करो और यही चाट रखो। कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंक उतरी होगी, क्योंकि जितना याद करेंगे उतनी जंक उतरेगी ना। तो अपने आप को देखना है कितना याद किया, कितनी जंक उतरी होगी। सारा मदार याद के ऊपर है, तो बच्चों को पूरी कोशिश करनी है। किस बात की कोशिश? अपना पूरा वर्षा पाने की कोशिश, पूरा वर्षा ले, जब बाप की गद्दी नशीन बने। तो ये बाबा कहते अपना पूरा वर्षा पाने की कोशिश जरूर करनी है, नर से नारायण बनना है। ये है सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्य नारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो पूर्णमासी पर ही क्यों कथा होती है, और कोई दिन पर कथा क्यों नहीं होती है? पूर्णमासी जबकि चंद्रमा पूरा 16 कला संपूर्ण है, फुल मून है। तो अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है, इसीलिए पूर्णमासी पर ही कथा करते हैं, नर से नारायण बनने की कथा, कंगाल से सिरताज बनने की कथा। कथा भूल गई तो कंगाल हो गए, फिर कथा याद आई तो फिर से सिरताज बन गए। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है, और वो बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्री मत देने वाला। बाप कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है, बस ये मेहनत करो, बाकी और बातों में बाबा नहीं जाते। और पावन बनना है, बाप को याद करना है, बस याद नहीं करेंगे तो फिर देखो क्या होगा। हाँ, नुकसान क्या होगा, याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ न कहाँ धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है, देह सहित देह के जो भी संबंधी है उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं, समझाना पड़ता है बार बार। कई कहते हैं बाबा वही बात बार बार क्यों समझाते हैं, समझाएंगे ना, अंत तक समझाते रहेंगे, क्योंकि यही काम की चीज है, और वही नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा होगा। तो बाप बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो क्या नुकसान होगा, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे। हाँ, बाबा बहुत सावधान भी कर रहे हैं, अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह कर देगी, काला मुंह करा देगी। एक है माया थप्पड़ मार करके मुंह फेर देगी, पर केवल मुंह नहीं फेर देगी, काला मुंह भी करा देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने, इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते है ना, काम विकार के वश एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला तो एक बाप ही है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है ही पतित दुनिया, बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है, है ना? बताया ना, एक बार किसी ने अव्यक्त बाप दादा के सामने आया, तब तो बाबा पर्सनल मिलते थे, तो बाबा ने बाबा से पूछता है, बाबा मेरा बेटा जो है ना वो दुकान खोल रहा है, तो बाबा वो कब उसका उद्घाटन करे, कौन सा मुहूर्त करे, क्या करे, तो बाबा ने कहा वो जाके ज्योतिषी से पूछो। ये बाबा का काम नहीं है, बाबा का काम तो पतित को पावन बनाना है। फिर उसमें बाबा ने ऐड भी ये भी किया कि बच्चे बाबा की याद का, याद की जो घड़ी है वो सबसे शुभ घड़ी है, तो कोई भी घड़ी अगर बाबा की उसमें याद है वो शुभ घड़ी है। ऐसे नहीं कोई मुहूर्त निकालना ये करना है, परंतु शुभ घड़ी तभी है जब उसमें बाबा की याद हो। अगर बाबा की याद ही नहीं है तो वो शुभ घड़ी थोड़ी हुई, भले मुहूर्त क्या भी निकालम। तो बाबा कहते हैं, बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। हाँ, बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि नहीं निकालो, नहीं मुहूर्त निकालो, भले करो, मना नहीं है, बाबा उसके लिए कभी मना नहीं करते, लेकिन बाबा की याद जरूर होनी चाहिए। बाकी धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो, लेकिन फिर भी है ब्रह्मा बाबा तो कई बार राय देते थे। किसी एक बच्चा आया, उसने वो बाबा का ज्ञान लिया, बहुत आगे बढ़ा, लेकिन उसको शराब की दुकान थी, तो शराब की दुकान से तो बहुत कमाते हैं। तो बाबा ने उनसे पूछा क्या धंधा करते हो, साकार बाबा ने, तो बाबा को कहा बाबा मेरी शराब की दुकान है। तो बाबा ने कहा इससे तो देखो जो शराब पिएगा वो जाकर के क्या क्या करेगा, पाप करेगा, तो उसका बोझ तुम पर भी चढ़ेगा। तो उसने क्या बाबा क्या करूं, तो बाबा ने कहा धंधा बदली करो, और सचमुच उसने बदली किया, बाबा की आज्ञा मानी और उसने वो डेयरी खोल दी, दूध का धंधा किया, उसमें तो और आगे बढ़ गया, है ना। तो देखो बाबा कभी कभी ये भी जरूर राय देते थे, बाबा भी लौकिक में बिजनेसमैन तो थे ही ना साकार बाबा, तो कभी कभी राय देते थे। तो बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह तुमको जो करना है सो करो, बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने, तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, कैसे पावन दुनिया का मालिक बने मुझे याद करो बस, और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करे, बहुत भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं समझते इससे हमारे पाप नाश होंगे, बाबा कहते हैं कितना भी दान पुण्य आदि करे, कितनी भी मेहनत करे, चाहे आग से आते जाते रहे, कहीं आग पर चलते हैं ना तो भी उनको कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं लगता है, तो भले वो कुछ भी करे, चाहे आग से आते जाते रहे, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है, इसको कहा जाता है सहज योग। तो अपने से पूछो हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, वो बिंदी जो ना खिसक जाती है। नींद में तो कोई पाप होते नहीं है, अशरीरी हो जाते हैं नींद में, बाकी दिन में तो बहुत पाप होते रहते हैं, और पुराने पाप भी बहुत है, पुराने पापी है हम, है ना, 63 जन्मों के कितने पाप है हमारे सिर पर, और पुराने पाप भी बहुत हैं। मेहनत करनी है याद की, यहाँ आते हो तो यह मेहनत करनी है, भट्ठी में यही मेहनत करती है ना, तो यहाँ आते हो तो यह मेहनत करनी है, बाहर के वाह्यात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। और बातें याद करते रहेंगे तो वायुमंडल को बड़ा खराब कर देते हैं, घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं, कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी, संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले फिर क्या करते हैं, बाबा की याद की मेहनत नहीं करते तो फिर क्या होता है, फिर वो विघ्न डालते हैं, क्रोध आ जाएगा, गुस्सा कर लेंगे, क्या क्या उल्टा काम कर लेंगे, तो ये विघ्न आया ना। तो मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं, ये इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो फिर कभी नहीं जानेंगे, ये याद की मेहनत अभी करनी है, तुम अभी यही ये जानते हो, ये मेहनत है अभी ही करनी है, फिर नहीं करेंगे, फिर कभी नहीं जानेंगे, अभी अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं, बाबा भी निश्चिंत हो जाता है बच्चों को आधा कल्प के लिए वर्षा दे दिया, और बच्चे भी निश्चिंत हो जाते हैं, कोई और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने यानी ख्यालात और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है, अब सोचो लौकिक बाप को कौन सा फुरना होगा, अब बेटी बड़ी हो गई है उसकी शादी करनी है, ये बेटा बड़ा हो गया है अब उसके लिए बहू लानी है, मतलब यही फुरना बाप को होता है, और बेहद के बाप को कौन सा फुरना है, बच्चे पावन बने, बच्चे स्वर्ग का मालिक बने, कितना अंतर है। लौकिक बाप का फुरना यानी उनका जो ख्यालात है या उनकी जो चिंता है, और पारलौकिक बाप के ख्यालात में कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, अब भक्ति मार्ग में बाबा को फुरना होता है, भक्त बहुत याद करते हैं, बहुत पुकार रहे हैं, साक्षात्कार उनको कराना है, या तो बाबा मदद भी तो क्यों नहीं करते, ऐसे नहीं कि बाबा मदद नहीं करते, भक्ति मार्ग में करते हैं, तो भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं, अब सतयुग में कोई भी याद नहीं करते, इसलिए बाबा भी निश्चिंत है, उनको क्योंकि बच्चों में कोई फुरना नहीं, कोई मेहनत नहीं, सब सहज है, तो इसीलिए बाबा भी निश्चिंत। पर द्वापर कलयुग में तो भक्त बहुत है ना, वो याद करते हैं। तो सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको मुझे वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम शांति धाम में बैठे हैं। थोड़े बच्चे सुख धाम में बैठे और बाकी सब बच्चे शांति धाम में बैठे हैं, वो बाबा को पता है इसलिए निश्चिंत है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो एलॉय पड़ गई है, चांदी तांबा लोहा, ये निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आने से भी दो कला कम होती है। ये बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा क्या करेगा, वो जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में ये बातें बैठेगी, नहीं तो बैठेगी नहीं। ब्राह्मण नहीं बनना है तो ये बातें कहाँ बैठेगी उनकी बुद्धि में, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बाबा कि बच्चे बाप को याद करो। ये बाबा भी कहेंगे, ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे, क्या शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं ना, हे बच्चों, ये आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों। वो निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही ये है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अलफ को याद करो, और कोई तीक तीक नहीं करनी है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही अंदर घोटना है। हम आत्मा है, गाते भी है ना, तुलसी दास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो तिलक कोई स्थूल थोड़ी है और वो स्थूल चंदन की बात थोड़ी है। तिलक कोई स्थूल थोड़ी है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय की यादगार है। तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो। जितना बाबा को याद करते रहते हो, ये चंदन घिसते रहते हो, उतना अपने को राजाई देते हो। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात राजाई का तिलक माना स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। तो बाप कितना सहज बताते हैं, बस सिर्फ ये याद करो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है। बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वो हमको वरदान देते हैं। इनके बाजू में आकर के बैठते हैं ब्रह्मा बाबा की आत्मा, और फिर बाजू में शिव बाबा भी आकर के बैठते हैं। इनके बाजू में आकर बैठते हैं, जैसे गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं, है ना। गुरु होता है तो अभी वो अपने शिष्य को आप समान बनाता, अपने बाजू में उसको बिठाता है, अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं। ये भी बाजू में बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के बाजू में बैठे, या शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं फिर दूसरा लेना है, ये जरूर है। आत्मा का ज्ञान है उस समय खास, शरीर छोड़ते समय, कि हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहां बड़ी रहती है। योग बल से बड़ी आयु हो जाती है। ये संगम की बात नहीं है, ये भविष्य की बात है। यहाँ तो कर्मों का हिसाब किताब तो है ना। सतयुग में तो आयु बहुत लंबी हो जाती है, अकाली मृत्यु तो कभी नहीं होगी। इसलिए तुम्हारी आयु वह बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी। तो भोगियों की आयु छोटी होती है, क्योंकि भोग में, भोग विलास में अपनी सारी शक्ति गंवा देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी। पवित्र होते हैं योगी, वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, आयु बड़ी रहती है। यहाँ आयु कितनी छोटी होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। छोटी आयु में अगर कोई शरीर छोड़ता है, ये भी कर्म भोग है, अकाली मृत्यु है। वहाँ अकाली मृत्यु कभी होती नहीं। तो बाप कहते हैं बाप को पहचाना है तो श्री मत पर चलो। एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, अब जाना है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा ना, शरीर के साथ तो नहीं जाएंगे ना। तो इसीलिए हमको अब जाना है, ये शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, अब नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। और बाबा को खास किन पर तरस पड़ता है, बूढ़ियों पर। बाबा के सामने बूढ़ी माताएं आती थी, गुड़गांव उस समय गांव जैसा था, कई ऐसे स्थान थे एकदम गांव से माताएं आती थी, इतनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती थी, बाबा को देख के इतना खुश होती थी, नाचती थी। एक बूढ़ी माता थी, वो ककोर एक स्थान है, कहीं हरियाणा में होगा, तो वो वहाँ की एक माता वो आती थी, बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी थी, पर इतनी लंबी थी एकदम, पर स्ट्रांग है ना, वो हरियाणवी माताएं भी इतनी लंबी चौड़ी होती है, तो इतनी बूढ़ी थी लेकिन बहुत स्ट्रांग थी। और बाबा जितनी लंबी थी, तो वो क्या करती थी, नाचती थी और बाबा को पकड़ के नाचती थी, इतनी उसमें शक्ति थी। तो बाबा को बहुत खुशी होती थी, बाबा कहते थे ये मेरी हमजिंस है, जिसकी बाबा भी तो बुजुर्ग थे। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बूढ़ियों कुबजाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते, ज्यादा मेहनत बाबा बूढ़ियों को नहीं देते हैं। बूढ़ी को कुबजा कहा जाता है, कुबजा उसको कहते हैं ना जिसको कुब है, ये ऐसे झुक कर चलती है, वो सीधी नहीं चल सकती है, तो वो कुबजा कहते हैं उनको। तो बूढ़ी को कुबजा कहा जाता है। तो बूढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान तो नहीं समझ पाती है ना, वो सुना पाती है, बस बाबा को याद करो। तो तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बाबा के आगे बूढ़िया बैठी होगी, तो बाबा ने एक से पूछा, तुमसे अगर कोई पूछे तुम कहाँ जाती हो, तो बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। लेकिन एक माता थी, बूढ़ी थी, रोज सुबह सुबह मुरली में आती थी, तो किसी ने उससे पूछ लिया तुम कहाँ जाती हो, सुबह सुबह कहाँ जाती हो, तो बोला यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, इतनी बूढ़ी थी, तो वो भी यूनिवर्सिटी में जाती है। तो बाबा कहते हैं उनको बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, बाबा को लिखते थे पत्र, बाबा को लिखते थे समाचार देते थे, बाबा फलाना ये VIP आया बहुत प्रभावित होकर गया, ये प्रभावित हुआ। परंतु बाबा कहते एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, ऐसे कोई नहीं लिखता है। ओपिनियन तो लिखते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है सबके लिए होना चाहिए, बस उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है, ये कोई नहीं लिखता है। बाबा समझ जाते हैं एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, हाँ प्रभावित चलो भले हुआ होगा पर निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रह तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वो नहीं करते, सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है, परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वर्षा ये नहीं। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, प्रजा तो ढेर बनेगी, प्रभावित जो होंगे वो प्रजा में आ जाएंगे, प्रजा तो ढेर बनेगी, बाकी राजा बने वो मेहनत है। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप को याद, बाप की याद में हर्षित रहते हैं, क्योंकि अगर बाबा की याद है अंदर तो हर्षित ही रहेंगे ना, चेहरा हर्षित होगा। हम फिर से सो देवता बनते हैं, ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो, एकांत में बैठ अपने को आत्मा समझो, ट्राई करो कैसे हर्षित रहेंगे। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं, क्या गारंटी देते हैं, तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं, जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं, सिर्फ तुम आएंगे नई दुनिया में, तुम बच्चे ब्राह्मण जो बनेंगे तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुप तू करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं, ये है कौन सा समय, बाबा कहते कयामत का समय, सबके हिसाब किताब चुप तू होने का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में ये शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में जाएंगे, हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहां भविष्य के लिए पढ़ाता हो कोई, है ना, वो तो उसी जन्म के लिए पढ़ाते हैं, जो भविष्य के लिए कोई पढ़ाता तो ऐसी कोई पाठशाला नहीं। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं, वो पढ़ाई से नहीं कोई राजा ही लेते हैं भविष्य में, बाकी जो दान पुण्य करते हैं ईश्वर के नाम, तो बाबा कहते हैं उनको जरूर वो राजा के पास जन्म लेते हैं, माना धनवान घर में जन्म लेते हैं। फिर क्या होता है, गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है, ये अंग्रेजी में कहावत है कि गोल्डन स्पून इन माउथ, माना जन्म किसी धनवान घर में लिया, तो धनवान घर में जन्म लेगा तो उनको उस बच्चे को किस में पिलाएंगे, सोने के चम्मच में पिलाएंगे, तो गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। सत्युग में तुमको मिलता है गोल्डन स्पून इन माउथ, हाँ कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है, यहाँ भी बहुत धनवान लोग हैं, राजाएं भी बहुत होके गए हैं, तो उनको जब बच्चा पैदा होता होगा तो उनको भी तो सोने के चम्मच से पिलाते होंगे, तो कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है गोल्डन स्पून इन माउथ। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं, तुमको तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, गोल्डन स्पून इन स्वर्ग, खाली गोल्डन स्पून इन माउथ नहीं, गोल्डन स्पून इन स्वर्ग, यानी स्वर्ग में तुम इतने धनवान बनेंगे। यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्मों के लिए राजाई, बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है फिर समझाना है, ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं, जिन्होंने बहुत दान पुण्य किया वो अगले जन्म में तो राजा ही घर में ही जन्म लेते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं, कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी तो एवजा मिलता है, हमने देखा कई है ना भाई बहने बाबा के यज्ञ में देते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या लिखते हैं, ये हॉस्पिटल के लिए, दो बातों के लिए लिखते हैं, ये हॉस्पिटल के लिए, समझते हॉस्पिटल के लिए देंगे तो हम हमारी हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, फिर दूसरा भोग के लिए देते, तो भोग के लिए देते हैं माना हमको भोजन की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि बाबा को देते तो बाबा रिटर्न में तो बहुत देता ही है, तो इसलिए कहते भोग में लगा देना, भले थोड़ा ही देंगे, ऐसा नहीं कि कोई जायदाद, लेकिन कहेंगे भोग में लगा देना। तो देखो ये भावना रहती है। तो बाबा कहते हैं कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा मिलता है, हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ। है कोई ऐसा जिसके जिसको सारी जीवन में कभी बुखार ही नहीं हुआ? हाथ उठाओ भाई, है कोई? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बुखार तो हुआ होगा। ऐसा कोई है जिसने सारी आयु में कभी गोली नहीं खाई? ऐसा भी कोई नहीं होगा। कलयुग में तो बाबा कहते हैं ये जो दवाई है ये तो तुम्हारा क्या है, हमारा लिए तो ये सही फल फूल है, तो ये तो खाते हैं तो खाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कई कहते हैं कि इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ, बड़ी आयु होती है, बहुत दान आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। ये तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहाँ मजा आए, जहाँ दिल लगे, वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। इतने बाबा के सेंटर्स हैं, इतनी गीता पाठशालाएं हैं, हाँ सब सेंटर्स हैं, जो जो आपके घर के नजदीक हो वहाँ जाकर के पढ़ाई पढ़ो। ऐसे नहीं कि हमारी टीचर कहती है वहीं आओ, अभी एक घंटा दूर है सेंटर तो वहीं आओ, ऐसे तो नहीं है। जहाँ नजदीक है वहाँ जाओ, बाबा मना नहीं करते हैं, तो किसको, टीचर को भी मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो वही है ना, पढ़ाई तो वही है। इसीलिए जो नजदीक है वहाँ पढ़ाई करो। तो बाबा कहते हैं जिसको जहाँ मजा आए, जहाँ दिल लगे, वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हो। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर ही आए, इनके पास क्यों जाते हो, ऐसे टीचर को नहीं कहना चाहिए हमारे पास ही आओ, इनके सेंटर पर क्यों जाते हो। नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ जाए, बात तो एक ही है, क्योंकि बाबा की मुरली तो वही है, चाहे उस सेंटर पर चाहे इस सेंटर पर, बाबा की मुरली तो वही चलती है। बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वो मुरली वहां से यहाँ से जाती है, वो मुरली मधुबन से जाती है, तो वो मुरली यहाँ से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं। अब टीचर टीचर पर भी मदार है, कोई टीचर तो बहुत अच्छी तरह से समझाती है और कोई तो बस ऐसे सीधा सीधा पढ़ लेती है। तो बाबा भी वही कहते हैं, तो कोई कोई टीचर फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार कर लेंगे, भाषण करते हैं तो वो तो अच्छी तरह से सुनाएंगे। कहाँ भी भाषण हो पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। ये तो सारी ज्ञान का सार है। कितना सहज समझाते रहते हैं बाबा, अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, बाहर के वाहियात ख्यालों को छोड़। वाहियात ख्याल आते हैं ना मधुबन में, तो भट्टी करने आते हैं तो बाहर की बातें अभी समझो कुछ सोचेंगे भी तो थोड़ी को यहाँ सोचने से वो बात हो जाएगी, जो होगा तो होगा, वहां जाकर के देख लेना, यहाँ सोचने की क्या जरूरत है। तो बाहर के वाहियात यानी व्यर्थ ख्यालातों को छोड़, एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरा, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, भक्ति में तो बहुत दान पुण्य का महत्व है, और सचमुच भारत में जितना दान पुण्य होता है और किसी देश में किसी धर्म में इतना दान पुण्य नहीं करते। भारत में भक्तों की ये विशेषता होती है, भावना होती है दान पुण्य करना। जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में फिर किसका महत्व है? याद का महत्व है, बाबा की याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा, कंबाइंड रूप माना मैं बाप के साथ कंबाइंड हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से तो प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो फिर आवाज में आओ। बोलने से पहले अव्यक्त स्थिति में स्थित हो फिर आवाज में आओ। दादी जानकी जी की ये विशेषता थी। जब भी दादी जानकी जी से कोई कुछ बात पूछता था, दादी जानकी पहले एक सेकंड साइलेंस में चली जाती थी। साइलेंस में जाकर के फिर बोलती थी, ऐसे नहीं बस किसने कहा और सीधा बोल दिया, कभी नहीं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से तो प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो फिर आवाज में आओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, पहले अव्यक्त स्थिति फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। फिर आवाज में आएंगे, मैं बाबा के साथ हूँ, अभी बाबा मुझसे बुलवा रहा है, तो फिर बाबा कहते सेवा करो, तो वो फिर तो क्या होगा, ऐसी कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। कंबाइंड रूप की सेवा माना याद के साथ सेवा, ये कंबाइंड रूप की सेवा। बाबा के साथ हो, बाबा के साथ कंबाइंड हो तो याद करके फिर सेवा करो, तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। कितने साधन है आज दुनिया में, तो साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज न होने दो। वो साधनों में साधना मर्ज हो जाए, बाबा कहते ऐसे नहीं होने दो। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। तो जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वालों को, कैसा भी कठोर वाला कठोर संस्कार वाली आत्मा होगी, परंतु जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं, वह सहज कर देते हैं। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा, जिसके अंदर सहन शक्ति है वो गंभीर भी होगा और गहराई में जाएगा, वो कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा, तुरंत उत्तेजित नहीं हो जाएगा, सहनशील होगा तो ऐसे उत्तेजित नहीं होगा, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो कल प्यारी मम्मा को भोग लगाया विशेष, और आज तो हम सतगुरुवार का दिन है, प्यारे बाप दादा को भोग लगाएंगे। ओम शांति। आज सतगुरुवार है, हम सब प्यारे बाबा के पास जाएंगे, बाबा को ओम शांति। कल भी हम सब ने प्यारी मम्मा के निमित्त बाबा को और प्यारी मम्मा को भोग स्वीकार कराया, कल भी हम सभी प्यारे बाबा के पास वतन में गए, बाबा को प्यारी माँ को भोग स्वीकार कराया, मिलन मनाया। और आज भी गुरुवार है और हम सब मिलकर के बाबा के पास वतन में जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, और भोग के बाद जो बाबा सुनाएंगे वो सुनेंगे, उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन होगी भाइयों की उस स्टैंड के पास, दूसरी लाइन होगी भट्टी के भाई, भट्टी के भाई हाथ खड़ा करें, भट्टी के भाई बीच में आएंगे, और तीसरी लाइन इस कैमरा के पास भट्टी की टीचर्स हाथ खड़ा करें, और माताएं, भट्टी की टीचर्स और माताएं इस लाइन में होंगी, और अन्य बहनें उधर 2 लाइन में होंगी, आपको अमृत मिलेगा। अच्छा, ये पूछना है कि जो भाई बहनें शांतिवन से आए वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, जो टीचर्स बहनें जिनकी भट्टी शांतिवन में यहाँ आए हैं 1 रात 2 रात वो हाथ खड़ा करें। अच्छा ठीक है, आप सबको बता दें कि जो भी भाई बहनें हैं, चाहे भट्टी के भाई बहनें हैं, चाहे शांतिवन से आए हैं, चाहे सेवाधारी हैं, सबका नाश्ता दोपहर का भोजन पांडव भवन के ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, क्योंकि नीचे स्थान कम होने के कारण वहां पर बैठ नहीं सकते, समर्पित भाई बहनों को भी बैठने की जगह कम मिलती है, इसलिए सभी को सुबह का नाश्ता दोपहर का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में ही करना है। फिर से हम सब उस बाबा के दिन को याद करते हैं, जब जब गुरुवार आता है तो हमें बाबा के साथ बहुत प्यार, वैसे तो है ही, बाबा ने कहा ना, बाबा से प्यार करना है, बाबा को याद करना है, और गुरुवार के दिन अमृत वेले से ही हम बाबा से मीठी मीठी रू रुहान करते हैं, बाबा से बहुत प्यार की बातें करते हैं, और बाबा हमारी रू रुहान का जवाब भी देते हैं। तो आज का दिन हम सब ब्राह्मण परिवार के लिए, विशेष करके गुरुवार का दिन बहुत ही विशेष दिन होता है। तो आज जिसको जो भी कोई संकल्प है वह बाबा के सामने समर्पण करके एकदम क्लियर माइंड से बाबा के पास वतन में पहुंच जाए और आपके संकल्पों का बाबा तो वैसे भी जवाब देते हैं और बाबा हमेशा भरपूर करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अभी हम सब चलते हैं बाबा के पास, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। जो भाई बहने वतन में जाएंगे बाबा के पास भोग स्वीकार कराने के लिए, हाथ खड़ा करें। सबको जाना है, कोई को मिस नहीं करना है। बाबा कहते अगर एक बच्चा भी मिस होता है ना, तो बाबा उसको कहां ना कहां से बुला के आते कि तुम कहां चले गए थे। बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं तो बाबा भी बच्चों को स्वीकार कराते हैं। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद जैसा आपको बताया कि पांच लाइन में अमृत होगा, एक लाइन उस्त्र भाइयों की, एक लाइन भट्टी के भाइयों की, तीसरी लाइन भट्टी की टीचर्स और भट्टी की माताएं, और दो लाइनें होंगी अन्य बहनों की। ओम शांति। अभी हम सब चले वतन की ओर।
सच्ची लगन से बन जा बाबा की तू गली को हार उड़ जा प्यारी वतन में नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार पंछी
छोड़ेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। या प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
शांति, आज सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते ही क्या देखती हूं कि बहुत सुंदर सुंदर फूलों की डेकोरेशन थी और हर एक फूल के पीछे जब ध्यान से देखती थी तो बाबा के बच्चे उन फूलों के पीछे दिखाई दे रहे थे और वो दृश्य इतना सुंदर था कि जैसे किसी बगीचे में फूलों की महफिल हो और चैतन्य फूलों का भी दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। लेकिन मैं चारों तरफ देखा कि बाबा कहाँ हैं, तो लेकिन वो महफिल के अंदर फूलों की खुशबू और फूल ऐसे हिलते हुए, पत्तियों की जो झूमने का नाचने का जो दृश्य था बहुत सुंदर था, कुछ सेकंड तक तो मैं वही देखती रही, फिर थोड़ी दूर के बाद क्या देखती हूँ कि बाबा दूर से आ रहे हैं। और जैसे बाबा नजदीक आए तो मैंने बाबा को पूछा, बाबा आप कहाँ गए थे? वतन में तो बहुत सुंदर महफिल है और सब बच्चे कैसे फूलों की तरह मुस्कुराते हुए नाचते गा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाप ने ये दृश्य देखा और बाबा ने ही बच्चों को इस महफिल में बुलाया है। और बाबा इस महफिल का दृश्य देख करके बहुत खुश हैं। वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे भाग्यशाली बच्चे। तो मैंने कहा, बाबा आप आज विश्व का भ्रमण कर रहे थे? बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि जबकि एक तरफ परिवर्तन का समय चल रहा है और दूसरी तरफ संपन्नता का समय है और तीसरी तरफ बच्चों का जो पुरुषार्थ है उसका देखने के लिए बाबा आज चक्कर लगाने के लिए गए थे। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने क्या देखा है? तो सब बच्चे कहते हैं, बाबा ने आज क्या देखा है? पहले तो सब बच्चों की महफिल में बाबा बच्चों को बहुत वरदान भी दे रहे थे और बाबा की दृष्टि से सब बच्चे खुशी में नाच रहे थे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा अभी बाबा बच्चों से क्या देखा है वह दृश्य दिखाना चाहते। हर एक सोचता है कि मैंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है। तो बाबा के सामने तीन प्रकार के मॉडल थे। पहला मॉडल तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, चमचमा रहा था, ऐसा सुंदर था। तो बाबा ने कहा, और दूसरा मॉडल जो है वो चमचमा तो रहा था लेकिन उसकी जो अंदर की गहराई थी वो अंदर ही छिपी हुई थी। और जो तीसरा मॉडल था वो बहुत सिंपल, और ऐसा सिंपल था देखने में लगता था मॉडल है लेकिन बहुत सिंपल था। तो बाबा ने कहा, जो बच्चे जिस मॉडल को पसंद करते हैं उस मॉडल के पास चले जाएं। तो अधिकतर सभी बच्चे जो हैं पहले मॉडल के पास खड़े हो जाते। जैसे वो मॉडल के पास खड़े होते हैं तो मॉडल के जितने भी फीचर्स हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई उस मॉडल से पीसेस निकल करके नीचे घूमते और कुछ न कुछ ऐसा मॉडल जो है ना वो खोखला होता जा रहा था। और बहुत कम बच्चे थे, थोड़े से थे जो बीच के मॉडल में खड़े थे, उसमें वो जो मॉडल के पीसेस निकल करके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे लेकिन वो मॉडल के अंदर फिर से सेटिंग नहीं हो पा रहे थे। फिर तीसरा मॉडल की तरफ केवल दो चार ही थे क्योंकि बहुत सिंपल था। तो उसके पास जाकर के जैसे खड़े हुए तो वो मॉडल इतना सुंदर चमकने लगा, नई दुनिया की तरह, नया विश्व की तरह से वो सब चमचमाते हुए चारों ही तरफ नया विश्व कैसा होगा वैसा स्वरूप बन गया। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा बच्चों के लिए नया विश्व, नई राजधानी बच्चों के द्वारा स्थापन करा रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। पहले प्रकार के बच्चे ऐसे हैं जो केवल बाहरी शो के ऊपर हैं, आंतरिक स्थिति पावरफुल नहीं है। आंतरिक स्थिति पावरफुल न होने के कारण कभी तो इतने अच्छी स्पीड होती है और कभी कभी उनका ऐसा होता है जैसे कि वो खोखला अंदर से फील करते हैं, खालीपन महसूस करते हैं। तो बाबा ने कहा अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाहर का पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर समय बाबा को कहते हैं बाबा ताकत नहीं है, शक्ति दो बाबा, ये कार्य आप करो। बाबा तो कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चे ऐसे हैं आंतरिक जो बाबा का साथ है उसको भूल करके मैंपन में आ जाते हैं, तो खालीपन महसूस होता है। दूसरे प्रकार के बच्चे वो हैं, बाप का साथ भी है, बाबा को साथ लेकर के भी चलते हैं, बीच बीच में हिम्मतहीन हो जाते हैं, बीच बीच में उतराव चढ़ाव में आ जाते हैं, बीच बीच में उनको लगता है ये कार्य मेरे से नहीं होगा, पुरुषार्थ में हल्कापन आता है, तो कार्य करते हुए उसी संकल्पों के साइकिल में घूमते रहते हैं, कर भी रहे हैं सब कुछ, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमजोर संकल्प के कारण उस चक्कर में घूमते रहते हैं। और तीसरे प्रकार के वो बच्चे हैं जिन्होंने सदा ये पक्का निश्चय किया है बाबा मेरे साथ है, बाबा कराने वाला है और बाबा की छत्र छाया हूँ, करम करावन हार बाबा है, बाबा निमित्त बनाया है, निमित्त भाव और निर्माण भाव से चलते हैं, तो वो कार्य करते हुए भी हर प्रकार से हल्केपन हल्का रहता है, उन्हें भारीपन नहीं होता है। तो बाबा ने फिर क्या किया, सब बच्चों को फिर से कहा, तो फिर वो विश्व का नया मॉडल और नए मॉडल के पास सब बच्चे खड़े हो गए, सबके हाथ में विश्व का ग्लोब था जो बच्चों के हाथ में आया। बाबा ने कहा सदा ये लक्ष्य रखें, हम भविष्य विश्व के अधिकारी राज अधिकारी हैं और वर्तमान समय बाबा ने जो हमें स्वराज्य का तखत दिया है और बाबा ने नई दुनिया के लिए जो ताज और तिलक दिया है उसके स्वरूप में टिके और निमित भाव से तो जो परिवर्तन का कार्य है उसको सहज रीति से कर सकेंगे। फिर तो बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे, बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया, फिर बाबा के हाथ में मैं क्या देखती हूँ, एक क्रिस्टल स्टाइल ऐसा बना हुआ था हार्ट, और बाबा ने वो हार्ट क्रिस्टल का सब बच्चों को दिया, कहा कि आज बाबा ने बच्चों को वतन में बुलाया है, और उस हार्ट में तीन बातें दिखाई देती थी, बीच में बाबा, बाबा के दिल में बच्चे, और फिर उस हार्ट के चारों तरफ सूर्य की तरह से किरणें दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा जैसे सूर्य हर समय अपनी लाइट को देता है, ऐसे बाप भी बच्चों को हर समय शक्तियाँ प्यार देते ही रहते हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी अपने आप को संकल्पों से दूर कर लेते हैं तो उस प्यार और शक्ति की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो सदा यही रहे, मैं बाबा के दिल में और बाबा मेरे दिल में, और सदा अपने दिल में जब बाबा बैठा है तो दूसरा तो कोई बैठ ही नहीं सकता, किसी खुशी में नाचते और बाबा के साथ के अनुभव भी करते रहे। फिर बाबा को सबका उनका याद दिया जिन्होंने बाबा को विशेष भोग के निमित्त याद प्यार दिया था। बाबा ने कहा याद प्यार देना ही एक शक्ति को प्राप्त करना है। बाबा ने उनको इमर्श करते हुए दृष्टि से भरपूर किया और मैं वापस आई। ओम शांति।